कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, भाद्रपद महीना शुरू हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य निकट है और भगवान श्री कृष्ण की मधुरतम रास पंचोध्याय के अंतर्गत हम पूर्णाहुति की ओर 33वें श्लोक में परीक्षित महाराज के 3 श्लोकों में कुछ संदेह है, स्वयं को नहीं है, स्वयं तो भगवान के प्रेमी भक्त है, परंतु जहाँ सुकताल में भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे, उस समाज में कुछ कर्म और ज्ञान के साधक भी बैठे हुए थे, उनके हृदय में शंका उत्पन्न हो सकती है, ऐसा परीक्षित महाराज जानकर रास भगवान की रास लीला के विषय में कुछ संदेह डाउट के समाधान के लिए, शंका के समाधान के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज को प्रार्थना की कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और दूसरे की पत्नियों के साथ रात को रास विलास करना कैसे उचित हो सकता है। और ये प्रश्न आजकल हमको भी सब जगह सुनने को मिलता है, तो सुखदेव महाराज ने इसका उत्तर दिया जिसका आप श्रवण करते आ रहे हैं। आज हम 31वें श्लोक में इस उत्तर का आगे वर्णन सुन रहे हैं। तो ये प्रसंग इन उत्तर देने के बाद सुखदेव महाराज श्रुति फल कहेंगे इस रासलीला सुनने का, तब ये अध्याय पूरा होगा। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव चरितं क्वचित् तेषां यतस्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तदसमाचरे। ईश्वराणां, एक है ईश्वर, उसका अर्थ होता है जो स्वामी और शासक है और शक्तिशाली है और समर्थ है। शक्तिशाली और समर्थ, शासक और स्वामी, उनके जो सेवक हैं ईश्वर, ईश्वराणाम, इसका अर्थ है जिसने भाई ईश्वर को अपना स्वामी मान लिया है। भगवान के प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है शक्ति आवेश भक्त, जिनमें भगवान ने अपनी शक्ति का आधान किया है, ऐसे भक्त। वचः, उनके वचन, सत्यम, सत्य है, ऐसा एक भगवान का मान भक्त ब्रह्मा है। वो कहते हैं नमे भारती, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती। ये भागवत में दूसरे स्कंद में नारद को ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों कमलों को हृदय में धारण किया है। तो भगवान के शुद्ध अधिकृत प्रमाणित शक्ति प्रविष्ट भक्तों के वचन सर्वदा सत्य होते हैं। तथैव, फिर भी, और ये समझना चाहिए आचरितम, उनका अपना आचरण भी, क्वचित, किसी कारण से, कभी कभी, किसका, ईश्वराणाम का, भगवान के भक्तों का, तेषाम, यत, अगर वो आचरण उनका स्ववच, उनके अपने वचनों के युक्तम, उससे के अनुस्वार हो, इसका मतलब उनका आचरण उनकी शिक्षाओं के अनुसार हो। बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, तथा समाचरे तो उसका ही आचरण करना चाहिए। तो इसका नकारात्मक भाव क्या होगा कि भगवान के प्रमाणिक शक्ति आवेश भक्तों के वचन सत्य होते हैं, कदाचित उनके चरित्र उन वचनों के अनुरूप अगर है तो उसका तो बुद्धिमान को आचरण करना चाहिए, परंतु अगर उनके वचन और उनके आचरण में कहीं भेद नजर आए तो वचनों को महत्व ज्यादा देना चाहिए, आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसका भाव ये। और एक बहुत सुंदर उदाहरण कृष्ण और अर्जुन के प्रसंग का इसमें आएगा, तो इसका भाव क्या है, इसका अर्थ हम देखते हैं। समर्थ महापुरुषों, समर्थ महापुरुष ये ईश्वर नाम का अर्थ है कि वाणी सत्य होती है। समर्थ किसने उसको बनाया? ईश्वर ने। अतएव कहीं कहीं पर अपने अधिकार के अनुसार उसका आचरण करना चाहिए। अतएव कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर अपने अधिकार के अनुसार उसके आचरण, उसका आचरण करना चाहिए। अगर हमारा अधिकार है तो करना चाहिए, नहीं है तो नहीं करना चाहिए। महापुरुष के आचरण का अनुष्ठान न करें। अतएव महापुरुषों के उपदेशानुसार ही बुद्धिमान पुरुष को आचरण करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है, यदि कोई कहे कि तो फिर सदाचार की क्यों प्रमाणिकता स्वीकार की जाती है? भाई सदाचार की प्रमाण क्यों स्वीकार किया जाता है? तो इस पर ईश्वराणाम इत्यादि श्लोक कहते हैं, समर्थ पुरुषों की वाणी सत्य होती है, अतएव सत पुरुषों के उपदेशों का आचरण करना चाहिए। उनका आचरण तो कहीं कहीं पर सत्य होता है, अतएव उन महापुरुषों की वाणी के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। चेतना महाप्रभु की भाषा में वैष्णवा क्रिया मुद्रा विज्ञा न जाने, महान उत्तम अधिकारी वैष्णव के क्रिया और मुद्रा को समझना संभव नहीं है, इसलिए उनके वचनों का ही आचरण करना चाहिए। तो भगवान के समर्थ अधिकृत भक्तों की वाणी सदा सत्य होती है और उनका आचरण सदा ही उदाहरण आत्मिक अपने वचनों के अनुरूप होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उनके वचनों का ही पालन करना चाहिए, उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने थोड़ा लंबा ही तात्पर्य इसका लिखा है। पहले ईश्वर की परिभाषा दे रहे हैं और ईश्वर के दो अर्थ विशेष रूप से, एक स्वामी और दूसरा शासक, और तीसरा समर्थ, और चौथा है शक्तिशाली। सुशील प्रभुपाद ईश्वर को अंग्रेजी में जब कंट्रोलर कहते हैं तो बहुत ही उत्तम दो उसके भाव प्रकट होते हैं कि स्वामी भी है और शासक भी है, और समर्थ भी है और शक्तिशाली भी है। तो ये चार परिभाषा इसलिए दी गई है, कोई अगर स्वामी हो परंतु शासक न हो, शासन न कर सके, सबको अपने बस में न रख सके, वो स्वामी हो परंतु समर्थ न हो, कृष्ण असमर्थ नहीं और भगवान के भक्त भी असमर्थ नहीं है, और फिर श्रील प्रभुपाद के शिष्य हमको सावधान करने के लिए कि लोग कहीं ईश्वर को सर्वसमर्थ स्वामी न मान लें, तो इसलिए परमेश्वर शब्द का उद्घाटन करके कहते हैं परमेश्वर जो है वो सारे ईश्वरों का स्वामी है और वो है श्री कृष्ण। और तब भाव देते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सामान्य व्यक्ति, अब ये अपना एक अनुभव लिख रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य के, पाश्चात्य देश में विशेष रूप से सामान्य जनता को शक्तिशाली शासक ईश्वरों का जानकारी नहीं है, उसके बारे में उनको अधिक जागृति नहीं है कि ये संसार का संचालन कोई देवता चलाते हैं, ईश्वर चलाते हैं, ऐसा उनका मान्यता नहीं है। क्योंकि आधुनिक निर्विशेष निराकार जो है विचारधारा है और वो मानते हैं कि ये निर्जीव सारा संसार है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई जीवन नहीं है और ये धरती जो है ऐसे बिना किसी कारण के तैर रही है। और उसी दृष्टि से उनका अपना एक विचारधारा है कि कैसे ये जीव जंतुओं का जो है धारावाहिक चलते हैं और ये अपने आप समय आने के ऊपर अपने से दूसरे पैदा कर लेते हैं। इसका एक भाव सीधा है कि अपने से बड़े किसी समर्थ स्वामी शक्तिशाली शासन के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो जगत को चलाते हैं। ऐसी नपुंसक अर्थहीन बिना माना वाले अपने मन घड़त अज्ञानी भौतिकवादी वादियों से ये पूरा जगत भरा पड़ा है। अब ये कहते हैं, अब ये वो कह रहे हैं जो बहुत बड़े महान शक्तिशाली देश के अनुभवी प्रभुपाद के शिष्य कह रहे हैं। नपुंसक समर्थ, हमारी सभ्यता नपुंसक है, बेमाना है, केवल मनु कल्पना करिए, अज्ञानी भौतिकवादी है और उनसे ये सारा जगत भरा पड़ा है। और अपना जीवन और भगवान के विषय में जो पूर्ण सत्य है, जो भगवान सब जगह प्रविष्ट है और सबका आधार है, उसके विषय में जानकारी नहीं है। जानना तो ये चाहिए कि वास्तव में अस्तित्व जो है, सत्य जो है, वो तो है परम पुरुष भगवान और उनका सब जीवों के साथ नित्य शाश्वत संबंध है। अब ये जीवों की तीन संख्याओं का वर्णन करके, तीन प्रकार के जीव हैं। एक अपने भगवान के साथ संबंध को भूल गए हैं अथवा भगवान को ही भूल गए हैं, वो नास्तिक हैं। दूसरे जो है ये सारे बद्ध जीव हैं जो इस संसार में रह रहे हैं, तो एक नित्य बद्ध है और दूसरे नित्य सिद्ध हैं जो भगवान के धाम में रहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा एक वर्ग है, एक क्लास है जीवों का, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भौतिक अज्ञानता से ऊपर उठकर कृष्ण भावना में प्रबुद्ध होना चाहते हैं। ये कृष्ण भावना के सहयोगी और जो कृष्ण भावना में अपने जीवन को जिन्होंने लगाया है, वो तीसरे प्रकार के हैं, जो नित्य बद्ध भी नहीं है, नित्य मुक्त भी नहीं है, परंतु साधक है। और तब हमारे को वास्तव में भगवान एक व्यक्ति है, और वो दिव्य व्यक्ति है, इसलिए कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य इन सब बातों को प्रकाशित करता है हमको, और ऐसा एक जगत नहीं है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और इन ब्रह्मांडों में बड़े बड़े शक्तिशाली, ये सारी परिभाषा एक शब्द की है, ईश्वराणाम। बड़े बड़े शक्तिशाली देवता उनका संचालन चलाते हैं, और उनको भगवान ने उनमें भगवान ने अपनी शक्ति का आदान किया है। तो ये अभी तक जो हमने तात्पर्य पढ़ा ये है ईश्वराणाम शब्द का। अब इसके साथ तुलनात्मक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमारे नगर हैं, हमारे प्रांत हैं और हमारा देश है, उसके ऊपर भी जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और अगर कोई स्टेट है तो उसका प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, और उसका प्रधान मुख्यमंत्री है, और उसका राज्यपाल है, और ऐसे कोई राज्य है तो उसका प्रधानमंत्री है अथवा उसका अध्यक्ष है। तो ऐसे ही भगवान के सारे जो ये ब्रह्मांड है उनके अंदर भी अधिकृत देवता हैं, जिसको ईश्वराणाम कहा गया है। और फिर आगे प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, ये जो लोकतंत्र का शासन जो चलता है, इसमें सामान्य व्यक्ति किसी को वोट देते हैं, तो जिसको वोट देते हैं उसके अंदर नेतृत्व करने की का सामर्थ्य होता है, तब उसको वोट देते हैं। हम जानते हैं कि इसमें सामर्थ्य भी है, इसमें नेतृत्व करने का स्वामित्व का भाव भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे वोट से उनको ये शक्ति मिलती है, उनके स्वभाव में ये शक्ति होती है, हम उसको जानते हैं तब उसको वोट देते हैं। इसलिए अब इस ईश्वराणाम की पूर्ण आहुति में भगवत गीता के दशम स्कंद अध्याय के अंतिम श्लोक का उल्लेख करते हैं कि यद यद ऊर्जमितम सत्वम, जहां जहां आपको कोई शक्तिशाली शासक समर्थ आश्चर्यजनक कुछ देखे तो उसमें मेरे अंश का ही आप समझो कि वो मेरी विभूति है। वैसे भी राजा को भगवान की विभूति माना जाता है, और ऐसा शब्द है नराणाम नराधिपम, ये दसवें अध्याय में भगवद गीता में है। तो जो जो जिसमें भगवान की विभूति का आधान होता है वो ईश्वराणाम कहलाता है। अब ऐसे ईश्वराणाम के भी दो विभाग करते हैं, बोला एक जो साक्षात भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है, भगवान के द्वारा जो अधिकृत हैं, अधिकृत भी हैं और शक्ति संपन्न भी है भगवान के द्वारा, वो है भगवान की सेवा में लगे हुए भगवान के भक्त, और उनके माध्यम से सर्वत्र सतोगुण का प्रभाव बढ़ेगा पूरे विश्व में। जैसे श्री प्रभुपाद जी का इस्कान की स्थापना हम लोगों को सतोगुण में लाने के लिए करते हैं, और श्री प्रभुपाद भगवान का शक्ति अवेश ही अवतार है, ईश्वराणाम शब्द उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से सटीक रूप से बैठता है, और उन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव से पूरे विश्व के अंदर सात्विक वातावरण को स्थापित किया। उसके विपरीत दूसरे जो कुछ शक्तिशाली शासक और समर्थ पुरुष हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, साक्षात भगवान के रूप से नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की बाहर अंग शक्ति के द्वारा एनपावर्ड हैं, उनमें उस भौतिक शक्ति का आवेश है। तो फिर वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, सीधा नहीं करते हैं, परंतु है वो शक्ति भी तो भगवान की है। उनमें भी अगर शक्ति है भगवान की, बाहरंग शक्ति है, तो बाहरंग शक्ति भी है तो भगवान की। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भगवान से एनपावर्ड है। और ये भी कोई उनके वे स्वतंत्र नहीं है, वो भी उस प्रकृति के द्वारा ही चलाए जाते हैं। और ये अज्ञानी आस्ते आस्ते अपने जीवन की यात्रा में अथवा कई जीवनों की यात्रा के बाद उत्परांत भगवान का शरण लेते हैं। ये भाव वो लिखते हैं कि जो ज्ञानी है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो सत्वगुण की प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा होती है और अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। इस भाव को यहाँ सूचित कर रहे हैं कि धीरे धीरे कई जन्मों के बाद ऐसे जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, तो फिर वो भगवान के शरण में आते हैं। और ऐसे जो साक्षात भगवान के द्वारा शक्ति आविष्ट नहीं होते हैं, और ये जो राजनेता है ये तो संसार में लड़ाइयां युद्ध झूठी आशाएं बहुत ही राजसिक योजनाएं भौतिकवादी लोगों को अपने अनुयायी बनाने के लिए चलाते रहते हैं, इसके पीछे भी भगवान की माया की योजना है। वो भी भगवान के खिलौने हैं। उनकी योजना क्या है कि लोगों को भगवतहीन सभ्यता के कटु और कठोर और दुखदायी सच का अनुभव हो। और ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, जब तक कोई पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत से हताश न हो जाए, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए, तब तक पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरण में नहीं आ जाता। तो ये प्रकृति के जो चेले हैं, जो प्रकृति के भौतिक प्रकृति के प्रभाव से शासन चलाते हुए अपने जो जिनके ऊपर शासन चलाते हैं, अपनी प्रजा को इतनी पीड़ा देते हैं कि हाय हाय करके भगवान के नाम लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कल एक छोटा सा उदाहरण मैसेज में देखा, भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है कि शासक इतना अत्याचार करेगा कि बच्चे और स्त्रियां पहाड़ों में अपने आप को जान बचाने के लिए भाग जाएंगी। ये भागवत का श्लोक एक तरफ दिया है 12 स्कंद का कलयुग के प्रभाव का, और दूसरी ओर आधुनिक एक टेलीविजन का और पत्रिका की चिट्ठी में लिखा है कि अफगानिस्तान में स्त्रियां और बच्चे पहाड़ों में अपनी जान बचाने के लिए अभी के शासक तालिबान के डर से भाग के जा रहे हैं। तो लिखा है कि कितना सत्य है, भागवत ने जो 5000 साल पहले घोषणा की थी वो आज आंखों से देखने को मिल रहा है। और ये कठोरता प्रकृति के नियमों की ऐसे शासकों के द्वारा लोगों को हताश करेगी, और ये भगवान श्री कृष्ण के शरण में आने के लिए प्रकृति उनको मजबूर करेगी, क्योंकि सीधा नहीं आते हैं, तो ये भी एक रास्ता भगवान ने बना रखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ईश्वराणाम शब्द की जब परिभाषा लिखते हैं, बोला उनके अंदर ये शक्ति कैसे आती है, बोला उसके दो कारण है। एक तो ज्ञान से आती है, इसका मतलब शास्त्र के अध्ययन से आती है, और दूसरा तपस्या से आती है। ज्ञान और तपस्या, ये दो कारण है उनके अंदर भगवान की शक्ति के प्रवेश का। और जैसे कोई भगवान के स्वभाव को और भगवान की इच्छा को जानेगा, भगवान का स्वभाव क्या है और भगवान की इच्छा क्या है। भगवान की इच्छा तो भगवत गीता में हम जानते हैं कि भगवत गीता की शिक्षा श्रद्धालुओं तक पहुंचाए, ये भगवान की इच्छा है। और भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान भक्त वत्सल है, दयालु है, सभी जीवों को अपना ही संतान मानते हैं और उनके परम पिता है, प्रेम करने वाले हैं। और जो ये दो बातें, एक करुणा हृदय में हो, प्रचार वही कर सकता है जिसके हृदय में दया का उदय हुआ हो, करुणा का उदय हुआ हो, दूसरे का दुख देख नहीं सकता। प्रभुपाद जी अमेरिका के में उतरते ही कहते हैं ये सब लोग दुखी हैं, रजो और तमोगण से पीड़ित हैं, और ये लोभी और आलसी लोग बड़े दुखी हैं। लोग कहते हैं अमेरिका बहुत बड़ी प्रगतिशाली और लोग सुखी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, मैंने उतरते देखा कि ये बड़े दुखी हैं, इनका हित कैसे किया जाए। ये जो दया हृदय में होती है, दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है, कहते मक्खन में और साधु में बड़ा अंतर होता है। साधु का हृदय और मक्खन में बहुत बड़ा, नवनीत और साधु हृदय में बड़ा अंतर है। मक्खन को जब आग लगती है तो पिघलता है, मक्खन स्वयं को आग लगती है तब पिघलता है, परंतु भगवान के भक्त दूसरे को पीड़ा में देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है, पर दुख दुखी होते हैं। वैष्णव जन तो ते को जानिए जो पीड़ पराई जाने रे, दूसरे के दुख को जो जानता है उसको वास्तव में वैष्णव कहते हैं। और उस दूसरे के दुख दूर करने के लिए अपने जीवन की सभी चीजों का बलिदान देने के लिए तैयार है, सब कुछ अपना बलिदान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है व्यक्तिगत रूप में। काय के लिए? आध्यात्मिक जीवन में परम उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए, तभी उसके ऊपर भगवान अपनी शक्ति का, उसके अंदर भगवान अपनी शक्ति का संचार करते हैं। भगवान के लिए जो अपना सब कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान करना चाहता है, अर्जुन अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लड़ना नहीं चाह रहा था, जब सब कुछ उसने भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के भाव को जानकर तैयार हुए गीता को सुनकर और बहुत बड़ी त्याग और तपस्या के साथ कार्य किया, तो आज भगवत गीता के ऊपर उनका चित्र पूजन्य है। कृष्ण के साथ सार्थक, जो कृष्ण ने अपना नाम पार्थ सारथी रख दिया और कृष्ण का सखा के रूप में प्रसिद्ध हो गया, ऐसे भगवान के भाव को, स्वभाव को और इच्छा को जानने वाले जो भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं, अपनी स्वार्थ को त्यागना चाहते हैं, उनके ऊपर भगवान अपनी कृपा और अपनी शक्ति उनके अंदर का आदान करते हैं, और वो ईश्वराणाम कहलाते हैं और वो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। और ऐसे ईश्वराणाम जो भगवान के समर्थ भक्त हैं, सामर्थ्यवान है, बुद्धिमान व्यक्ति उनको पहचानते हैं और उन्हीं को स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इस तात्पर्य से हमें तो ये समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन काल में श्रील प्रभुपाद जी रहे हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान की इच्छा और भगवान के भाव के अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का आंदोलन स्थापित किया है। हमको उनको बुद्धि से जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कि भगवान धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो एक प्रमाणिक उदाहरण अपने जीवन के आचरण से स्थापित करते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता के 3:24 में कहते हैं कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं भी अपने वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार सब कर्तव्य करता हूँ, इसलिए कि लोग मेरा कहीं अनुकरण करके और पतन के रास्ते में न जाएं और वर्ण शंकर उत्पन्न न हो जाएं। मैं उदाहरण के लिए कार्य करता हूँ, मुझे कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक प्रमाण स्थापित करना चाहता हूँ। ऐसे भगवान अपने अन्य अवतारों में भी संसार में कैसे आचरण करना चाहिए उसकी शिक्षा दी है अपने आचरण से। भगवान रामचंद्र एक अति उत्तम उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम का। दशरथ नंदन के रूप में आज्ञाकारी पुत्र है और एक बहुत बड़ा पोषक और रक्षक पति है, वो एक स्नेह करने वाला भाई है और जनता से प्रेम करने वाला राजा है और दुष्टों को संहार करने वाला, ऐसा अद्भुत उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम का है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने जो परम धर्म है, जो परम धर्म है और जो धर्म की परिकाष्ठा है, अंतिम लक्ष्य है धर्म का, उस सिद्धांत को स्थापित किया। और वो क्या है कि भगवान जीवों से परे हैं, जीव तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, भगवान भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे हैं। और दूसरा उसके कारण क्या करना चाहिए, किसी को भगवान का नकल नहीं करना चाहिए अथवा भगवान बनने की मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मायावादी कहते हैं कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, तो भगवान ने ये परम धर्म स्थापित किया, धर्म की परिकाष्ठा ये कि सब भगवान का शरण है क्योंकि भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं, तो सेवक को भगवान बनने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। और ये जो सर्वश्रेष्ठ धर्म का सिद्धांत है, ये अपने आप में अतुलनीय है, इससे तुलना नहीं की जाती है, ये बहुत ही यूनिक है और न इसके कोई समान है और न ही इससे कोई महान है। न कोई भगवान के समान है, न कोई भगवान से महान है और न कोई भगवान के इस सिद्धांत के समान और सिद्धांत कहीं धर्म में है और न ही कहीं इससे महान सिद्धांत है। और ये भगवान की भगवता विशेष रूप से कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास विहार किया उसके अंदर ऐसे बाहर से दिखता है, सामान्य दृष्टि से दिखता है कि ये व्यवहार जो है कहा जाए कि इमोरल है, ये चरित्र की कसौटी से, सामान्य चरित्र की कसौटी के ऊपर पूरा नहीं उतरता, ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु कोई इसका नकल नहीं कर सकता। अगर कोई नकल करेगा तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा और बदनामी मिलेगी, और यही बात सुखदेव गोस्वामी यहां कहने जा रहे हैं। जीव कृष्ण को सामान्य जीव नहीं समझना चाहिए कि उसके अंदर कोई काम भाव आ सकता है, यह रास काम लीला नहीं है, यह प्रेम की लीला है, इसका तो बड़ा आदर करना चाहिए, परंतु कभी इसका नकल नहीं करना चाहिए, नकल करेगा तो नाश हो जाएगा। जैसे 30वें श्लोक में कहा गया है, देवता भी कभी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो देखने में निंदनीय आता है, असभ्य लगता है, परंतु उसको भी कोई दंड नहीं मिलता है, वहां कोई नियम नहीं है दंड का। तो स्वयं साक्षात भगवान के ऐसे कार्य जो परी जो जो परम धर्म का है, जहां भगवत गीता श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कई तब अत्र नित्र निर्मत्सरा नाम परम धर्मो परम जो कहा गया है, एक होता है सामान्य धर्म, स्वर्ग आदि प्राप्त करने वाला धर्म जो सामान्य लोग जानते हैं, दूसरा होता है मुक्ति प्राप्त करने वाला धर्म जो ज्ञानी जानते हैं, तीसरा होता है वैकुंठ प्राप्त करने वाला धर्म जो वैष्णव जानते हैं, परंतु परम धर्म इनसे ऊपर है, और वो चौथा परम धर्म है कृष्ण प्रेम, और उसका उदाहरण नारद जी देते हैं गोपी प्रेम। तो परम धर्म तो है गोपी प्रेम, और श्री कृष्ण ने इस परम धर्म के सिद्धांत की स्थापना की है। अब इस परम धर्म कृष्ण के का कोई नकल नहीं करे, जैसे कि शंकर जी की तरह कोई विष पीने का प्रयास करेगा तो नाश हो जाएगा। शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, उनका तो आभूषण बन गया कंठ, परंतु और कोई पिएगा तो मर जाएगा। अब प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि अंतिम में भगवान और भगवान के जो ईश्वरानाम प्रकार के अधिकृत और शक्ति संपन्न भक्त है, उसमें भी अंतर को समझना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी है, इनके ऊपर अपने कर्मों का प्रभाव हो सकता है, कर्म के फल को भोगने की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु भगवान सनातन रूप से स्वतंत्र है और कभी भी कर्मों के प्रभाव में नहीं आते हैं, वो तो कर्म के फलदाता है। उनकी स्थिति विलक्षण है, अतुलनीय है और सर्वोपरि है। ये है प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य, मुख्य रूप से ईश्वरानाम शब्द के ऊपर है, और फिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय जो उन्होंने विशेष धर्म की स्थापना की, और यहाँ ये उदाहरण चक्रवर्ती पाद देते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो अब ये प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाद के, जो ये प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, क्या है प्रसिद्ध श्लोक भगवत गीता का, यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव अत्रो जनाः सप्रमाणं कुरुते लोकस्तन अनुवर्तते। जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति आदर्श स्थापित होता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं, वैसे ही आचरण, तो कौन सी परिस्थिति में ये सिद्धांत ठीक है और कौन सी परिस्थिति में ये सिद्धांत ठीक नहीं है। तो कहते हैं देवताओं के शिक्षाएं, आदेश अथवा महान समर्थ पुरुषों के आदेश सदा ही कल्याणकारी होते हैं और भक्तों का उनका पालन करना चाहिए। तो पहले ये बात कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो हैं उनकी शिक्षाएं और आदेश सत्य हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम्। जब भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में अवतार लेकर राम अवतार में अपने कार्य करते हैं, तब भी उनकी शिक्षाओं का ही पालन करना चाहिए। और कभी भी वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसको करने की मना की है ईश्वरानाम ने, भगवान के अधिकृत समर्थ भक्तों ने, या देवताओं ने, या भगवान ने, वो नहीं करना चाहिए। वो ही कार्य करना चाहिए जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। भले कभी कभी बट इवन दोज इंस्ट्रक्शन शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्क्रिप्चर, और शास्त्र में है उन सारे उनके आदेशों का शास्त्र में प्रमाण है और शास्त्र ने उनको अनुमोदन किया है, तभी उसको कार्य करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान को ऐसे कार्य करना चाहिए, वचन को, शास्त्र को देखकर, प्रमाण को देखकर फिर कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा अश्वत्थामा को मारो, ये उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। कब? जब अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का गर्दन काट दिया, सर उठा के ले गया, एक अक्षौणी सेना और पांडवों के सेनापति दृष्टद्युम्न का पीड़ा दे के जो है वध कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए और पकड़ लिया। ब्रह्मास्त्र भी एक दूसरे का चलाया, ये कथा आप जानते हैं। तब भगवान ने कहा इसको मार दो, रथ के ऊपर भार क्यों उठाते हो, आपने कहा था ना इसका सर ले चलोगे द्रौपदी को देने के लिए, तो सर काट के ले चलो, भगवान आदेश दे रहे हैं। परंतु अर्जुन ने भगवान के इस आदेश का, इस शिक्षा को जो भगवान ने दिया उसका पालन नहीं किया, अश्वत्थामा को नहीं मारा। क्यों? तो कृष्ण ने और भी शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, भले वो कोई अपराधी हो, अत्याचारी हो, फिर भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, यह भी तो शास्त्र में कृष्ण का ही वचन है। और यह भी शास्त्र में वचन है कि किसी के पास अस्त्र शस्त्र नहीं हो तो उसको नहीं, क्षत्रिय को नहीं मारना चाहिए। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण था, गुरुपुत्र था, और उस समय अश्वत्थामा निरस्त्र था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए उसको नहीं मारना चाहिए, अर्जुन ये जानता था शास्त्र से। और कृष्ण का यही राय शास्त्र में है, शास्त्र का है, मैं यही कृष्ण का राय है, इसलिए कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि क्या ये धर्म के नियमों को जानता है क्या। भगवान रामचंद्र अपने पिता दशरथ को जब पिंडदान कर रहे थे चित्रकूट में, इंगूदी का आटा तो था नहीं, इंगूदी के पेड़ को, तो मंदाकिनी से दशरथ महाराज का हाथ बाहर निकला, लेकिन पंडित पुरोहित ने कहा भगवान आप तो साक्षात भगवान हैं, आपके पिता का हाथ निकला, आप इसके ऊपर पिंड को रखेंगे और ये ले भी लेंगे, परंतु भविष्य में दूसरों के पिता का हाथ नहीं लगेगा तो शास्त्र के प्रमाण को कोई नहीं मानेगा, इसलिए शास्त्र के प्रमाण को मानना अति आवश्यक है, आप कृपा करके ये पिंड कुछ घास के ऊपर रखो, अपने पिता के हाथ को केवल प्रणाम करो। और हमारे प्रिय दीन बंधु जी एक कथा इसी के ऊपर बताते हैं कि भगवान के अपने साक्षात वचनों से भी भगवान के शास्त्र के वचनों का प्रमाण स्वयं भगवान मानते हैं, और ये विशेष लीला हम उसका वर्णन करें इससे पहले जीव गोस्वामी पाद का भाव पढ़ते हैं। हमको भगवान के, ईश्वर के आदेश को प्रमाणित और सत्य मानना चाहिए, और हमको वो आचरण करना चाहिए जो शास्त्र के और भगवान के नियमों के विरुद्ध न हो, और वो शक्तिशाली कारण है। भगवान आचरण से सिखाए और शास्त्र में हो वो तो बहुत उत्तम है, परंतु भगवान के अथवा महापुरुष के आचरण में नहीं हो परंतु शास्त्र में हो तो शास्त्र को अधिक मान्यता देनी चाहिए। बुद्धिमान को ये विचार करना चाहिए और शास्त्र के ही अनुसार कार्य करना चाहिए, अथवा उसको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। अब ये बहुत प्रसिद्ध प्रमाणिक उदाहरण पुराना है, भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए। दूध का मटका बहुत ऊपर टांगा था गोपी ने। भगवान श्री कृष्ण ने और उस मटके के अंदर एक बड़ा घंटा बांधा हुआ था, एक बड़ा घंटा बांधा हुआ था। ये दुनिया ऐसी है। ग्वाल बालू ने कहा, कन्हैया ये घंटा बजेगा, मटका हिलेगा, घंटा बजेगा, गोपी आएगी हमको पकड़ेगी। भगवान ने कहा, घंटे के देवता को बुलाते हैं, हे घंटा देवता, घंटा का देवता आ जाओ, हम बताओ मैं कौन हूं। बोला, आप ईश्वर हो। बोला, मैं कौन हूं? घंटे को पूछा, तुम कौन हो? बोला, मैं आपका सेवक हूं। बोला, सेवक का क्या काम है? बोला, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो सुनो घंटा मत बजना, हमारे सारे ये मित्र दूध पीना चाहते हैं। अच्छा जी, नहीं बजेंगे। कृष्ण ने चार ग्वाल बालों को खड़ा किया, उसके कंधे के ऊपर खड़े हो गए, दो और को खड़ा किया, उसके ऊपर अकेला चढ़ गया, और भी मटका बहुत ऊपर था। तो कन्हैया एक बहुत लाकुटी टेढ़ी रखते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तीखा सा जो है पॉइंटेड चूंच बनी होती है, और उससे दे मारा मटके को ठा, और ऊपर से दूध गिरा कृष्ण के ऊपर। कृष्ण के ऊपर दूध गिरा, अभिषेक कृष्ण का होने लगा, घंटा जोर जोर से बजने लगा। घंटा जो जोर जोर से बजा, कन्हैया ने कहा, तुमको कहा था महीम नहीं बजना। बोला, आपने कहा नहीं बजना, मैं मान रहा हूं, परंतु आपने शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक हो तो शंख भी बजे, घंटा भी बजे, झालर भी बजे, तो आपका अभिषेक साक्षात हो रहा है, अब तो हमको बजना ही चाहिए ना। और घंटा जोर जोर से बज गया। और भगवान का ये तो शास्त्र का नियम है कि घंटा बजना चाहिए, शंख बजना चाहिए जब भगवान का अभिषेक होता है। अब तो भगवान के अभी शरीर से जो दूध गिर रहा था वो गोप गोप सब ऐसे भर के पी रहे थे। अब घंटा बजा, गोपियां चारों ओर से घेर लिया घर को। अब कन्हैया को कहते हैं ग्वाल बाल के, अब क्या करेंगे, ये गोपियां पकड़ेंगी। बोला, कुछ नहीं करो, जो गुरु करे वो चेला करो, जैसे मैं करूं वैसे आप करो। अच्छा, बोली कन्हैया क्या करें? बोला, ये दूध से मुंह सारा भर लो। दूध से सबने मुंह भरा। बोला, अब क्या करना है? बोला, जो गोपी सामने आए उसके मुंह में करना फू, सीधा उसके मुंह में दूध डालना, वो आंखें बंद करे, तुम भाग जाओ। ये फुफकार दूध की लीला कन्हैया की। तो कन्हैया का आचरण नहीं कर सकते हैं, ये रास लीला रसास्वादन के लिए है। तो यह प्रमाण किया दिया गया है कि शास्त्र के वचन को और किसी महात्मा के और महात्मा के और अधिकृत व्यक्ति के वचन में और आचरण में अगर भेद नजर आए तो शास्त्र की बात को मुख्य रूप से मानना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण नवदीप से आए और आके कहा कि मैं तो साक्षात आपको ब्रजनंदन श्याम सुंदर मानता हूं, परंतु मुझे एक संदेह है कि ये नित्यानंद जो है ये सन्यास है, सन्यासी है, रेशमी कपड़ के पहन के पान चबाता है, और इसका आचरण जो है वो उदाहरण नहीं है। चेतना महाप्रभु गंभीर हो गए और कहा, ब्राह्मण देवता, नित्यानंदर अगर अपने हाथ में मद्रा की बोतल लेकर वैशा के गले में हाथ उठा के भी बाजार में घूमे तो भी मेरे लिए पूजन्य है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महापुरुषों के आचरण में दोष देखना बहुत बड़ा अपराध है। और फिर उदाहरण देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मा जी अपनी उत्पन्न की हुई पुत्री वाक के पीछे जब काम आतुर होके दौड़े तो मरीची के छह पुत्रों ने हंसकर उसका उपहास किया और उस ब्रह्मा जी के दोष को दोष देखने की मूर्खता करने के कारण उन छह को देवकी के उन छह को पहले हिरण्यकशिपु के वहां असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। और फिर वो तपस्या करने लगे तो हिरण्यकश ने उसको शराप दिया कि तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारे को मरना पड़ेगा। वो छह देवकी के पुत्र के रूप में आए और काल नेमी उनका बाप था, उसके हाथों से वो छह षडगर्भ मारे गए। ये चेतना महाप्रभु कथा बता रहे हैं उस ब्राह्मण को कि महापुरुष महापुरुषों के अंदर भी दोष आचरण में नहीं देखना चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु में विशेष रूप से जो भाव के स्तर पे भक्त होते हैं उनके आचरण में कभी कोई दोष दिखे भी तो उसको चंद्रमा के ऊपर जैसे सस का निशान है, शशांक कहते हैं उसको, रैबिट का निशान है, उससे चंद्रमा के प्रकाश में कोई रुकावट नहीं होती, ऐसे शुद्ध भक्त के आचरण में दोष दिखे भी तो उसको चंद्र के ऊपर काले धब्बे के समाज समझ के उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। ये बहुत, और विशेष रूप से एक श्लोक भगवत गीता का हम सब जानते हैं, अपि चेतसि दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुर एव सम्मन्तव्य सम्यक विवस्तो ही स क्षप्रम भवति धर्मात्मा सश्व शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानि नमे भक्त प्रणश्यति। इस श्लोक के ऊपर तीन अलग अलग प्रकार के भाष्य हैं, कमेंट्रीज हैं, तात्पर्य हैं। एक को कहते हैं कंजर्वेटिव, एक को कहते हैं लिबरल और एक को कहते हैं रसिक। जो कंजर्वेटिव वो है वो ये है कि स्वभाव से हमारा, एक तो हमारा स्वरूप है एक हमारा स्वभाव है। स्वरूप में तो हम भक्ति में लगे हुए हैं लेकिन स्वभाव कई जन्मों का है, किसी कारण कभी दिन कभी कोई पुराने संस्कारों के कारण कोई अपराध हो जाता है, परंतु ऐसे अपराध के कारण अगर भगवान कहते हैं कि तुमको मेरे हो मैं तुमको अपना भक्त मानता हूं तो पुनः अपराध करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, यह है संकीर्ण। इसका मतलब भक्त से कैसे अपराध हो ही नहीं सकता है, भक्त अपराध नहीं कर सकता है। ये एक उदाहरण दिया गया है कि अगर हो भी जाए तो उसको देखना नहीं चाहिए। उधार ये है कि जीवन में कभी अपराध हो जाए भक्त के साथ, कभी उसका दुर्व्यवहार या अति निंदनीय कार्य देखा जाए तो भी उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है पवित्र हो जाएगा। परंतु जो मैं विशेष कहने वाला था अब वो ये है, रसिक भाव संभव भक्ति विनोद ठाकुर का है, अपि चेतस दुराचारो। मैं श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो रास व्यवहार करता हूं वो दुराचार जिस है, परंतु उसको जो महान मेरा भाव जानता है और फिर भी मेरा भजन करता है, अपि चेत दुराचारो भजते माम अन्य भाग। मेरा व्यवहार गोपियों के साथ है वो संसार उसको दुराचार मानता है, परंतु जो उसको महान मानता है और मेरे अनन्य भक्त में लगता है वो वास्तव में साधु है। और ऐसे साधु का जो, ऐसे साधु का वो ईश्वरानाम है, और उसका जो आज्ञा का पालन करेगा वो जल्दी साधु बन जाएगा। चप्रम भवति धर्मात्मा, ये दूसरा बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो तो पहले से ही मेरे गोपियों के साथ रास विहार को महान मान के उसको पूजा करता है, उसकी वो तो सही जगह पे है। और जो ऐसे व्यक्ति का आदर करता है तो वो भी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। चेतना महाप्रभु जब गोपी गोपी कहते थे तो लोग जो है कहते थे ये बड़ा पंडित है, निमाई गोपी गोपी क्यों कर रहा है। तो महाप्रभु ने लोग कहीं अपराध न करें इसलिए सन्यास ले लिया कि सन्यासियों का लोग आदर करते हैं, परंतु इतने बड़े सन्यासी होते हुए भी इस गोपी भर्तहु पद कमल योर दास 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 अनुदास की शिक्षा क्यों दी, क्योंकि ये रास लीला का जो भगवान श्री कृष्ण की परम काष्ठा की परम लीला है, ये परकिया भाव की जो परिकाष्ठा है केवल गौड़िया वैष्णव का ही ये कंठहार है, परम सिद्धांत है, इसके रहस्य को बहुत से नहीं जान पाते हैं। और कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर में जब ये रास विहार के 5 अध्याय लिखने का प्रसंग आया तो उस समय एक तो हनुमान प्रसाद पोदार थे जो कृष्ण के प्रेम भक्ति के तरफ झुके हुए ज्यादा थे, श्रील प्रभुपाद को अपने शिष्यों के साथ 71 में बुलाया था गोरखपुर में, और ये राधा माधव गाना पहले इस कान में वहां से शुरू हुआ है। तो 71 तक कथा से पहले राधा माधव नहीं गाया जाता था, वहां पहली बार ये राधा माधव प्रभुपाद जी ने भक्तों को सिखाया, और तब से ये राधा माधव हर कक्षा से पहले गाने का एक नेम निर्धारित हुआ। परंतु जयदयाल गोविंद का जो दूसरे थे, ये दो व्यक्ति मुख्य थे संस्था स्थापना करने वाले, वो रास विहार डालने से लोग विचलित हो जाएंगे। तो हनुमान प्रसाद ने बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखा था रास विहार के ऊपर कि ये सबसे उत्तम भगवान की परिकाष्ठा की लीला है, ये हृदय है भागवत का, इसको निकाल देंगे तो फिर भागवत बिना हृदय के कोई रह सकता है क्या? बिना हृदय के भागवत का बिना हृदय के भागवत कैसे रस देगा? ये तो धड़कन है भागवत की। तो बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ इसको स्थापित किया था। तो ये ऐसा विषय है जिसके ऊपर बड़े बड़े विद्वान भी विचलित हो जाते हैं। और ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो राधा के भाव की और उसके प्रेम की सीमा का हमको कैसे पता लगता? ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार है। और हमने कहा था चैतन्य महाप्रभु इस रास लीला का ही महाप्रसाद कलियुग के लोगों को मिला है, जिसमें कृष्ण ने कहा था कि मैं गोपियां आपका ऋण नहीं चुका सकता, और उस ऋण चुकाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण आए और गोपी के भाव में कृष्ण कृष्ण गली गली में गाया है। तो हमारे को ये जो कृष्ण प्रेम का प्रसाद प्रभुपाद जी के द्वारा मिला है, इसको जो भगवान श्री गौर हरि लाए हैं, गौर गोपाल गौर गोविंद लाए हैं, ये असल में गोपियों की कृपा है, गोपियों का ऋण उतारने के लिए लाए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का जो प्रभाव पूरे विश्व में, ये असल में गोपियों की कृपा है। और भीष्म पितामह जैसा अखंड ब्रह्मचारी अपने अंत समय में गोपियों की इस रास लीला का स्मरण करता है, और उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के दास्य भाव को प्राप्त करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु महासन्यासी, कठोर सन्यासी, गोपियों के इस रास विहार का नित्य श्रवण करके और प्रताप रुद्र को गले से लगाते हैं जब गोपी गीत से सुनते हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम। तो ये लीला भगवान की सब लोगों के सामने कहने की नहीं है, परंतु अपने जीवन में इस लीला की परिकाष्ठा को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, और आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल कृष्ण की कृपा से इसके आगे 2-3 श्लोकों का भाव पढ़ेंगे। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर खत्म के लिए। तो अभी हम लोग ने सारे भक्तों का माइक अनम्यूट किए हैं, तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा भी एक प्रश्न है।
बोलिए ब्रजनंदन, बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जब कहा कि जो भक्त कई बार गलती नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, कई बार करते हैं तो हम लोग को नहीं सुनना चाहिए, मगर कई बार हम लोग किसी भक्त के बारे में हम लोग सुनते हैं गलत, तो फिर बाद में वो जब हम लोग उस भक्त को देखते हैं तो मन में वो बात आ जाती है, गलत बात आ जाती है, वो नहीं आना चाहिए मगर आ जाती है, तब उस समय में हम लोग को क्या करना चाहिए?
उस समय हमको उनके अंदर जो अच्छाई है उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके अंदर अच्छाइयां 100 मिल जाएंगी और बुराई 1 मिल जाएगी। इसलिए अच्छाइयों का ज्यादा स्मरण करना चाहिए तो बुराई उसके पीछे दब जाए, ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरेक के अंदर अच्छाई भी होती है और कुछ अवगुण भी होते हैं। अच्छाइयों का इतना ज्यादा हवा दो, एक चिंगारी थोड़ी अच्छाई की है उसको हवा दो ताकि वो आग हो जाए और बुराइयां उसकी उसके अंदर जल जाए। तो दोष तो हम सबके अंदर है ही, ऐसा निर्दोष तो एक भगवान है। और फिर हमने एक बार कहा था कि दोष देखने का अधिकार किसको है? पिता को अपने पुत्र में देख दो दोष देखने का अधिकार है, गुरु को अपने शिष्य में दोष देखने का अधिकार है, पति पत्नी को एक दूसरे में दोष देखने का अधिकार है, लेकिन हमको सबका दोष देखने का काम नहीं है। और हमका उसकी चर्चा करेंगे तो उसका दोष हम में आ जाएगा, ये सावधान होना चाहिए। अगर हम किसी के दोष का चिंतन करेंगे तो वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए हमको तो कभी भी दोष किसी के का विचार करने की मूर्खता करनी ही नहीं चाहिए, परंतु हमारा कई जन्मों का स्वभाव ऐसा बना हुआ है कि दोषों को सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, कथा सुनने में नींद आती है, लेकिन दोष सुनने में कोई कभी नहीं सोया आज तक। इसलिए किसी के फिर भी देखो कि इतने दोषों के बाद भी अभी भक्ति में कैसे लगा हुआ है, उसकी इस अच्छाई को देखकर भगवान को प्रार्थना करो कि मेरे हृदय से इसके प्रति अगर कोई दुर्भाव है उसको निकाल दो और मैं इसके अंदर अच्छाई देखूं और इसको भी अच्छा बना दो। प्रार्थना कर लो अच्छा है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो है ये शायद बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मैं फिर से आपने ये बोला कि भगवान जब आपने वो लेडीज का बच्चों का एग्जांपल दिया कि वो लोग कंदराओं में और माउंटेन्स में चले जाते हैं, उससे पहले आपने ये बोला कि ये सब अरेंजमेंट भगवान करते हैं जिससे कि हम उनकी शरण में आए और उनके पास आए। लेकिन कई बार इतनी इतनी परेशानी होने के बाद भी हम लोग उनकी शरण में नहीं जाते हैं, उनमें बिलीव नहीं करते हैं। इस ऐसी सिचुएशन में हमारी मानसिक स्थिति जो होती है वो भगवान की तरफ अपने आप क्यों नहीं झुकती है, और क्यों हम बाकी चीजों में जाकर अपने आप को सुलास फाइंड करने की कोशिश करते हैं? जीव ऐसी हरकतें क्यों करता है, इस तरह की चीजें क्यों करता है? क्या ये पिछले जन्म का कुछ कर्मों का है या जीव की स्थिति ही ऐसी होती है?
जीव वास्तव में बिल्कुल शुद्ध सच्चित आनंद निर्मल है, परंतु अनादि काल से कर्मों के जो संस्कार उसके हैं वो इतने प्रबल हैं कि वो न चाहते हुए भी, यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा है कि कोई पाप नहीं करना पड़ता है, करना चाहता है फिर पाप उससे क्यों होता है? तो उसका उत्तर है असल में स्वभाव कराता है, और स्वभाव के कारण जो हमारा स्वभाव बनता है प्रकृति के तीन गुणों से, और ये प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव होता है हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर, मन बुद्धि अहंकार के ऊपर। और ये सूक्ष्म शरीर हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जाते हैं तो हमारे साथ चलता है, तो क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता है इसलिए ये सूक्ष्म शरीर के अंदर जो संस्कार हैं जो हमारा स्वभाव बनाते हैं ये जन्म जन्मांतर का है। इन स्वभावों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए एकमात्र जो आवश्यक चीज है वो है भक्तों का संग, और भक्तों का संग मिलता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। तो कृष्ण जब देखेंगे कि वो इन सब दुखों से अब हताश होके मेरी ओर आना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण उनको भक्तों का संग देते हैं, तब उनके स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये कई कर्मों के संस्कारों के कारण जीव भटक रहा है और भगवान ये देखना नहीं चाहते हैं, परंतु ये माया भी भगवान की है। इसका लिखा है तीसरे पहले स्कंद के सातवें अध्याय में कि माया के दो काम है, एक दंडित करना ताकि वो सुधर जाए, और दूसरा उसको सुधारने के लिए अवसर देना। जैसे जेल में दो काम होते हैं, एक को अपराध का दंड दिया जाता है और सुधरने के लिए अवसर दिया जाता है कि दोबारा जेल में ना आए। ऐसे हमारे कर्मों के कारण हमको दंड मिलता है, हमको दुख भोगना पड़ता है, परंतु सुधरने के लिए भगवान ने शास्त्र भी दिया है, साधु भी भेजा है, स्वयं परमात्मा के रूप में भी बैठे हुए हैं। अगर हम उसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं, परंतु अगर हमारे कर्म अभी लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम प्रयास करके भी नहीं ले सकते। इसलिए 12वें अध्याय भगवत गीता में मन और बुद्धि अर्पण कर नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, साधन भक्ति करो, वो नहीं कर सकते हो, मेरे लिए काम करो। वहाँ लिखा है कि अगर किसी कारण से आपका समाज आपको भक्ति करने नहीं देता है, अपना परिवार नहीं देता है, आपका कार्य नहीं देता है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ पुण्य कार्य करना शुरू करो, तो कम से कम वो पुण्य कार्य आपके अंदर त्याग पैदा करेगा, तब आपको त्याग वैराग होगा तो ज्ञान के लिए जगह बनेगी, तब आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज नहीं तो कल किसी न किसी जन्म में तो आएंगे। वो लिखा था कि ये दूसरे लोग जो हैं ये भी भगवान के ही इशारे से काम करते हैं, लेकिन माया के माध्यम से लोगों को दंडित करते हैं ताकि लोग वापस सुधर के आ जाएं। और भक्त जो है वो सीधा भगवान से अधिकृत है, लोगों को भक्ति में लगाते हैं प्रेम पूर्वक। तो दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं। भाई सरकार भी, भाई जेल का जो मिनिस्टर है वो भी सरकार का है, और एजुकेशन का मिनिस्टर है वो भी सरकार का है, दोनों सरकार के हैं, लेकिन एक दंडित करता है और एक सुधारता है। तो ये दोनों भी भगवान के हैं, लेकिन एक जो है वो पीड़ा देता है और एक सुख देता है, और ये हमारे कर्मों के कारण है। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरु जी,
धन्यवाद, प्रणाम।
धनिष्ठा माता जी आप पूछ लीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम।
How would we get to know if Krishna is giving an instruction or whether he's just testing us? The two examples would be on the battlefield. Krishna told Arjun to cut Ashwathama's head, and Arjun got to know that Krishna is just testing him, and that's why he didn't do it. But on the battlefield again, Krishna told Yudhishthir to lie. And Yudhishthir Maharaj realized that he is instructing Yudhishthir to lie, so that's why he did it. How would we get to know if Krishna is testing or is he giving an instruction?
This is a very difficult question. What the principle was established is that we have to refer the instruction with the scripture. If scripture approves that, then we should follow that. This is the principle which is established in this verse. If you have an instruction and then there is an instruction in the scripture, if they are contradictory, then we should be very careful before we execute that. शास्त्र में प्रमाण और वचन के प्रमाण दोनों को देखना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के सहमत है तो करना चाहिए, एक दूसरे के विरुद्ध है तो सोचना चाहिए। इसलिए शब्द है बुद्धिमान। तो युधिष्ठिर महाराज महाजन हैं, धर्मराज हैं, और भगवान श्री कृष्ण धर्म से ऊपर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा अश्वत्थामा हत्वा, ये आप झूठ बोलो, तो युधिष्ठिर महाराज मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वे एक तो महात्मा है, धर्मराज है, वो जानते हैं झूठ बोलने वाले को कौन सी सजा मैं देता हूँ, यमराजों में जानता हूँ। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से सोचा और शास्त्र से सोचा, फिर युद्ध की परिस्थिति के अंदर भगवान के उद्देश्य को समझने के लिए भगवान ने उनको बुद्धि दी अंदर से परमात्मा के रूप में, कि तुम जो सोच रहे हो वो पाप जो है वो तब लगेगा जब मेरे शरण नहीं लेते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तुम सारे धर्म जिनका विचार कर रहे हो इनको छोड़ लो और मेरे वचनों का शरण ले लो, तुम्हें पाप से मैं बचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है क्योंकि मैं समर्थ हूं, तो मैं समर्थ हूं तुम्हारे इस पाप। तो अभी भी लोग इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे क्यों किया, और ऐसा भी लिखा है कि धर्मराज ने ये जो किया इसके कारण जो पहले उसके पांव धरती पे नहीं लगते थे अब धरती पे लगने लगे उसके पहिए, और उसको स्वर्ग जाते हुए नरक के रास्ते से जाना पड़ा, ऐसे भी लिखा है शास्त्र में। तो सावधान भी किया है कि नहीं करना चाहिए, परंतु कृष्ण के लिए करना है क्योंकि कृष्ण के लिए सब चीजों का बलिदान देना भी बहुत आवश्यक है। तो अश्वत्थामा के मारने के लिए भगवान ने उसको एक हाथी को भीम से मरवाया भी, और युधिष्ठिर ने फिर भी भगवान की बात को आधा ही माना, अश्वत्थामा हतवा तो कह दिया, फिर नरोवा कुंजवा भी कहा कि पता नहीं हाथी है कि ये, परंतु भगवान ने उस वक्त बहुत ज्यादा ढोल बजाकर और नगारे बजाकर उस आवाज को ही छुपा दिया। इसको है या कर्ण को है, ये भगवान ने जो किया ये तो धर्म से ऊपर की बातें हैं। इसी बात को यहां लिखा है कि भगवान परम धर्म को स्थापित करने आए हैं, और वो परम धर्म है कि सामान्य जीव से भगवान का कार्य विलक्षण होता है, इसलिए जीव के स्तर पे उस कार्य को नहीं देखना चाहिए। आपका प्रश्न अभी भी ठीक तरह से मैं नहीं उत्तर दे रहा हूं कि कब भगवान परीक्षा लेते हैं और कब भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये अर्जुन के लिए भी कह सकते हैं कि अर्जुन शास्त्र में देख सकता है कि कुल का नाश नहीं करना चाहिए, भगवान करा रहे हैं, वहां अर्जुन ने भगवान की बात को मान लिया परंतु अश्वत्थामा के समय में नहीं मारा। तो अर्जुन के पास बुद्धिमानी थी, वो समझ पा रहा था कि अब भगवान का भाव क्या है, इसलिए दो शब्द हमने देखे थे तात्पर्य में, भगवान का स्वभाव और भगवान की इच्छा को जो जानता है उसी को भगवान अधिकृत करते हैं, उसी में भगवान अपनी शक्ति का संचार करते हैं और वो फिर बात को समझ सकता है। ये उत्तर मेरे को इन शब्दों से समझ में आता है, the devotee who understand the nature and the will of the Lord will empower and enlighten him to act accordingly. So devotee must know the nature and the will of the Lord. Then only Lord will empower and enlighten him to act on a right path. ये आज के तात्पर्य से तो यही उत्तर हमको समझ में आ रहा है।
Okay, प्रभु जी, थैंक यू।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
But it's not a very easy question. But for us, it is better to refer to the scripture. Therefore, Shadu, Shastar and Guru, there are this triangle is for check and balance. If all three approve, then we should perform. If there is a contradiction, then we should be very conscious and thoughtful and have a second opinion.
Okay, Prabhuji, thank you very much for answering the question.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
And even our Acharya, you can, Sanatan Goswami paid a bribe to the jail superintendent to be released from jail, but not for sense gratification, but to join Chaitanya Mahaprabhu and live as a mendicant. Though this act is not actually moral, but nobody condemned that. So there are certain things which are very difficult to really analyze and reach to the conclusion, but they are approved. Hare Krishna. There are certain people, they are beyond the normal routine rules, like the demigods. We have all these examples of the Vishwamitra and other, they have done some mistake, but still they are worshipable. Hare Krishna. Some other question or comment?
Hare Krishna Prabhu, aapke is pravachan ke liye bahut bahut dhanyavaad. Prabhuji, aapke charno mein mera koti koti dhanyavaad. प्रभु, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे जो भक्त आदर्श भक्त है हमारे सामने, तो हम लोग उनके आचरण का अनुसरण करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि लौकिक दृष्टि से अगर उनका कोई कार्य है जो हमको समझ में नहीं आता है या उसकी वजह से उनको भी पीड़ा हो रही है, तो क्योंकि हम अनुसरण कर रहे हैं तो क्या उसका अनुसरण हमको करना चाहिए कि उसमें कुछ विवेक बुद्धि अपनी लगानी चाहिए? प्रभु जी,
वो हमने जो दो शब्द कहा चेतन महापुरुष भाषा में, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा न जाने, हम महाभागवतों के जीवन के आचरण को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जो उनकी आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय में एक बंसीदास बाबा या कौन है इसके पास अपने शिष्यों को कहते थे, आप दूर से प्रसाद रख के आना, कभी अंदर जाना नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या कर रहे और आपसे अपराध हो जाएगा। तो ऐसे महाजन जो हैं, ऐसे बड़े, उसके अंदर कहीं त्रुटि देखने में आए भी और हम उसको समझ न पाए तो भी पहले दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, हमको समझ नहीं, मैं नहीं आता है ऐसे मानना चाहिए। और अगर वो चीज बार बार होती है तो फिर, और वो बार बार होती है और हमको ये लगता है कि इससे संस्था को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, बड़ी हानि हो जाएगी, तो फिर हमारे जो अधिकारी है जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं उसको कहना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं परंतु मेरे को ये दोष बार बार इस महात्मा जैसे पुरुष में देखने में आ रहा है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए। इसके प्रति तो कोई मुझे द्वेष नहीं है, ना इसकी मैं निंदा करना चाहता हूं, परंतु संस्था के लिए इसके इस कार्य से कहीं कोई क्षति न पहुंचे तो आप जो इसके समान अधिकारी हो इसको पूछ लो कि ये क्यों करता है, अथवा इसको आवश्यकता नहीं हो तो इसको हटा देना चाहिए। ऐसे भी बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, न कि पब्लिक में बिना समझे उसकी निंदा करनी चाहिए।
तो अनुसरण करना चाहिए जो जो लौकिक दृष्टि से हमको नहीं समझ में आ रहा है,
अगर हम
तो वो आदर्श है,
वो एक सिर्फ एक दृष्टि से, अगर उनके उस कार्य से संस्था को या समाज को, समाज में संस्था को क्षति पहुंचती है तो हमारे को हमारे अधिकारी को जाके विनती करनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं ये कि भाई आपके वहां कोई ऐसा दिखाई दे तो मानो के वहां श्री वल्लभ प्रभु है या और कोई, उनको कहना चाहिए मैं गलती, मेरी गलती हो सकती है, मैं गलत देख सकता हूं, परंतु ये बार बार हो रहा है, आप जरा उनसे पूछ लो कि ऐसे करने से कहीं संस्था के ऊपर लोगों की जो है को निंदा करने का मौका न मिले। वो भी उसको सुधारने के लिए करना चाहिए अगर हमको गलती समझ में आती है तो, न कि उसको बदनाम करने के लिए।
जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण।
क्या समाचार है?
एकदम बढ़िया प्रभु जी, आपकी कृपा है, धन्यवाद।
जय श्री प्रभुपाद, बोलिए प्रभु जी।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी जो बोला है इसका क्वेश्चन का जो आंसर दिया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मेरे मन में भी यही था, तो उसका आंसर आपने बड़ी ही खूबसूरती से दिया है ताकि किसी को ठेस भी नहीं पहुंचे और सबका जो है समस्या का समाधान भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद
प्रभु जी। एक आपका आज्ञा हो तो एक आखिरी प्रश्न पूछूं।
बोलो बेटा।
प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जैसे शास्त्रों पे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब पे ज्यादा जोर देना चाहिए, पर जैसे जैसे कि कोई गुरु है वो आपकी पात्रता देख के, स्थान देख के या काल देख के आपको निर्देश देता है कि आप ऐसा ऐसा करो, और जो शास्त्रों में उससे अगर हम लोग देखते हैं या तो दूसरे साधु से भी उससे मिलाते हैं तो वो कभी कभी मैच नहीं होता है, क्योंकि गुरु आपको अच्छी तरह जानता है, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, तो इस स्थिति में कैसे करें कि शास्त्र में अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्ट्री है या दूसरे साधु भी कुछ कॉन्ट्रडिक्ट्री कर रहे हैं, पर एज ए शिक्षा गुरु, एज ए दीक्षा गुरु वो आपको आपकी पात्रता के अनुसार आपको जानते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
शिक्षा दीक्षा गुरु में कोई अंतर तो है नहीं, परंतु शिक्षा गुरु का जो स्तर आजकल हमारे भक्ति वृक्ष में है वो शिक्षा गुरु का स्तर हम नहीं मानते। वो तो नए भक्त हैं, उनका अनुभव कोई शिक्षा गुरु ऐसा होना चाहिए कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु हैं। तो शिक्षा गुरु की जो प्रणाली हमारे पास प्रचलित है उसके उसके उसका आज्ञा शास्त्र के विरुद्ध है तो मैं नहीं मानना चाहता हूं, मैं शास्त्र को मानूंगा। और दीक्षा गुरु प्रमाणिक है, वो अगर कोई कार्य करने को कहता है वो शास्त्र के विरुद्ध है और मैं मेरा मन नहीं मानता है, फिर भी मेरे को गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। हो सकता है संकट भोगना पड़े उसके अपराध के कारण, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये मेरे को विश्वास होना चाहिए कि गुरु का वचन जो है कृष्ण की इच्छा के अनुसार हुआ है तो उसको पूरा करना चाहिए। और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं और करते भी हैं, और वो शास्त्र के, जैसे मैं आपको बताया कि सनातन गोस्वामी को घूस रिश्वत देना पुलिस के सुपरिटेंडेंट को, कोई 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 एक मॉरल एक्ट नहीं है, कोई एक सही नहीं है, परंतु उद्देश्य जो उसका है, उद्देश्य हमको नहीं समझ में आता है। गुरु का अगर उद्देश्य है कि बहुत बड़े कल्याण का कार्य करना चाहते हैं और इस ये कल्याण का कार्य करने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा, जैसे मैं आपको कहूँगी बहुत मुश्किल है ये ऐसे प्रश्न है जिसके लिए, इसलिए इस श्लोक में शब्द है बुद्धिमान। प्रभुपाद जी कहा करते हैं यूज यूर इंटेलिजेंस, कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड डू इट प्रॉपरली। फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए अगर गुरु अपने परंपरा के गत अभी तक ठीक तरह अपने सेवा कर रहा है तो। लेकिन ये बहुत जो है क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी संस्था में हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ कुछ कार्य ऐसे हुए गुरुजन भी नहीं रह पाए बहुत समय तक, तो ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसलिए प्रभुपाद जी के अपने वचन कहीं, अब मॉर्निंग वॉक में एक बात कही है, लेटर में दूसरी बात कही है और पुस्तक में तीसरी बात कही हुई है। इसलिए बहुत बड़े दार्शनिक जो है विश्व में कहते हैं कि ये 10 कमांडमेंट क्रिश्चियनिटी में फिर भी 14 सेक्ट हैं, और हमारे पास इतने प्रभुपाद जी के वचन हैं, हर एक कोई कोई भी बात सिद्ध करना है चाहे तो कर सकता है, परंतु फिर भी प्रमाण क्या होना चाहिए अंत तो गत्वा। इसलिए प्रभुपाद के पुस्तक जो है वो अति श्रेष्ठ और अधिकृत प्रमाण है, और जो प्रभुपाद ने कहा है वो भी प्रमाण है, परंतु वो कॉन्टेक्स्ट में प्रमाण है, किसी विशेष व्यक्ति और समय के आधार के ऊपर, वो सबके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन जो शास्त्र में है वो सबके लिए है। तो वो प्रमाण जब हम मानेंगे तो विशेष व्यक्ति के लिए विशेष परिस्थिति में मानेंगे, लेकिन वो सामान्य नहीं होगा, वो सबके लिए मानने नहीं होगा।
थैंक यू गुरुजी।
लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये रियली स्पीकिंग।
पर जैसे कि जो डिवोटी भी है जो साधना कर रहे हैं उनके लिए भी कभी कभी क्वेश्चन, ये मतलब सिचुएशन बहुत डाइसी हो जाता है, समझ में
नहीं। भागवत में लिखा है कि जब दो अथॉरिटी हो जाती है तब बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रियव्रत महाराज को उसका पिता स्वयं भू मनु कह रहा था राज करो, और उसका गुरु कह रहा था नारद जी के संन्यास लो, वो बहुत बड़ी परेशानी में हुआ, तो ब्रह्मा जी को लाया जो जो नारद का भी गुरु है और पिता है। और तब जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आपको राज करना चाहिए, तो उसने कहा कि अभी तो वेदों का आचार्य और प्राणों का संहिता आचार्य दोनों कह रहे हैं, इसलिए गुरु जी से आज्ञा लेके और राज किया। तो ऐसी स्थिति में जो है वो गुरु जी से, मतलब जहाँ कहीं दो बातें हो तो फिर तीसरे किसी महान व्यक्ति से का बीच में आके और सही निर्णय निकालना चाहिए और आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक असंजमस है, एक बहुत बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है ये, बहुत ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बेसिकली स्पीकिंग। चंचल माता जी का अचंचल प्रश्न है, बोलिए।
वो बोल रही है कि करण निहस्त्र थे युद्ध में, तो कृष्णा ने उनको, अर्जुन को बोला कि उनका संसार का लक काट दें, ये क्या ये धर्म के विरुद्ध है?
वही मैं कहता हूँ, ऐसे ये दो तीन कार्य ऐसे हैं महाभारत में, उनके पीछे उद्देश्य को देखना चाहिए, उद्देश्य क्या था। उद्देश्य कृष्ण को धर्म को स्थापन करना था और धर्मराज को राजा बनाना था, और इसके लिए ये दो बाधाएं थी, एक द्रोणाचार्य और एक कर्ण और एक भीष्म पितामह, इन तीनों को रास्ते से हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कोई योजना बनाई, और उसके पीछे भी कोई रहस्य था जो कोई नहीं जानता था लेकिन कृष्ण जानता था। असल में अर्जुन और कृष्ण नर नारायण थे बद्री का आश्रम में, 1000 हाथों वाला सहस्र बाहु असुर था, और एक दिन कृष्ण बाण चलाता था उसके दो आवाजू काटता था, एक दिन अर्जुन बाण चलाता था नर और नारायण, उसके जब दो बाचू बच गए तब वो वहां से भाग गया और वो कर्ण के रूप में आया, और अब उसको मारने का सेवा अर्जुन की थी जो नारायण नर था, और इसलिए कृष्ण ने कहा कि अब ये पुरानी उधार रही हुई इसकी खत्म करो, अस्त्र शस्त्र को छोड़ो, ये हमारा पुराना वेर चल रहा है। ऐसे बद्रीनाथ में इसकी कथा को बताते हैं, परंतु है कि अर्जुन ने ये कार्य यहाँ कर दिया, निरस्त्र था फिर भी कर दिया, नहीं चाहते हुए भी कर दिया। उसके पीछे भी अंदर देखेंगे महाभारत में, उसके गुरु का उसको शराप था कि तुम्हारे को मेरा कोई भी ज्ञान और शक्ति परशुरामे का याद नहीं, और ब्राह्मण ने कहा था कि तुम्हें याद नहीं आएगी जब तुम्हें से ज़रूरत होगी, और परशुराम से उसने धोखे से ज्ञान लिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निरस्त्र को छोड़ नहीं सोचो, द्रौपदी के अपमान को सोचो जिसके लिए इस सारे युद्ध की आयोजन किया गया है, ये सारा युद्ध द्रौपदी के केशों के अपमान के लिए महायज्ञ है जिसके अंदर इन सब महारथियों की आहुति डालनी पड़ेगी, और ये पहले ही मैंने मार दिए है, मैंने आपको दिखा दिया है 11वें अध्याय में विश्व रूप में, तुम तो नाम का बाण चलाओ, मार मैंने दिया है। तो ये कृष्ण के कार्य जो है महाभारत में, ये बहुत बड़ा रहस्य है। मेरे ख्याल में कुछ भक्तों ने इसके ऊपर कई जो है भाव लिखे हैं, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। वही अर्जुन है, अश्वत्थामा को नहीं मारा और कर्ण को मार दिया, वो कृष्ण के भाव को जान गया, कृष्ण के स्वभाव को जान गया, और आश्चर्य है कि नहीं मारा जबकि उनके 5 पुत्र मारे गए थे, मारना चाहिए था फिर भी नहीं मारा, क्योंकि कृष्ण के भाव को जानता था और कृष्ण के स्वभाव को जानता था।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बट प्रभु जी फिर ये हम लोगों के लाइफ में तो ये समझना बहुत मुश्किल होगा, और इसको तो बहुत समय लगेगा कि
बहुत कहां पे ये आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, इसलिए ये रास लीला भी आसान नहीं है। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत से जगह इसको पढ़ने से भी लोग बहुत कतराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, आपका पूरा हो गया इसलिए बहुत अच्छा। ऐसे क्या है कि हम कितने क्या समझ सकते हैं, वैसे ये तो चलो बहुत ऊपर की बातें हैं, हम तो सामान्य क्या हो रहा है अपने शरीर में वो भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो क्या हो गया शरीर में पता नहीं, चलो डॉक्टर के पास, तो हमारे को ये नहीं समझ में ना आना है, चाहे नहीं आता है तो चलो गुरुजी के पास, और क्या करेंगे शास्त्र के पास, क्योंकि हम तो सब समझ नहीं सकते, हमारी की बुद्धि में समझने की जो इतनी सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करके जितना समझाएं उतना ही समझना चाहिए, और जो न समझ में आए उसको नमस्कार करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं।
थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा,
श्री प्रभुपाद की जय,
और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर दिया और बहुत ही भक्तों का लाभ हुआ। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो ये सेशन हम कल तक के लिए स्थगित करें।
प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, नाम पावन वैष्णव नमः।
पंचाकल्प कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।